एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलबाद रहे।
सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
की हमारी सुनैया।
धरती को मालिक तपैला, सारा सृष्टि को रक्षक तपैला।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें जब आप उसके वचन को सुनते हैं। आइए हम उसके वचन को सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे, हमें तेरा वचन को समझने और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरा वचन को अच्छी तरह से बतला सकूं। हर एक श्रोताओं के संग हो कि वे तेरे वचन को सुनकर आशीषित होने सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हम लोग सीखेंगे पापियों को ख्रीस्ट की जरूरत के विषय में। मनुष्य को आदि में संपूर्ण स्वास्थ्य और संतुलित दिमाग दिया गया था। उस समय वह अपने आप में पूर्ण और परमेश्वर के अनुरूप था। उसके विचार तथा उसके लक्ष्य पवित्र थे, परंतु आज्ञा उल्लंघन के कारण उसकी शक्ति जाती रही और उसकी सामर्थ नष्ट हो गई तथा पवित्र प्रेम का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। आज्ञा उल्लंघन के कारण उसका स्वभाव इतना कमजोर हो गया कि उसके लिए अपनी ही सामर्थ से शैतान का मुकाबला करना असंभव हो गया। शैतान ने उसे कैद कर लिया और मनुष्य सदा तक इसी रूप में रह जाता यदि परमेश्वर ने विशेष रूप से हस्तक्षेप ना किया होता। शैतान की कोशिश तो यही रही है कि इंसान की सृष्टि रचना में ईश्वरीय योजना असफल हो जाए और सारी पृथ्वी में संताप और विनाश भर जाए। तब वह इन सारी बुराइयों का दोष परमेश्वर द्वारा मानव की सृष्टि करने के ऊपर लगा सकता था। अपनी निष्पाप अवस्था में मनुष्य उस सर्वशक्तिमान से आमने सामने बातचीत करता था जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसे हम पढ़ते हैं कुलुसियों 2:3 में, परंतु पाप के बाद पवित्रता में कोई आनंद नहीं मिला और वह परमेश्वर के सामने आने से कतराने लगा। जो हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से नया नहीं बनाया गया है, उसकी हालत अभी भी ऐसी ही है। अब उसका परमेश्वर के साथ कोई मेल जोल ना रहा और ना ही उससे वार्तालाप करने में उसे कोई आनंद मिलता था। सही बात तो यह है कि पापी को परमेश्वर के सामने आने में कोई खुशी नहीं मिलती है। वह पवित्र लोगों की संगति से दूर भागने लगा। यदि उसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिल भी जाए तो वह प्रेम से भरे हुए पवित्र वातावरण में खुश नहीं रह सकता। स्वर्ग में तो निस्वार्थ प्रेम का साम्राज्य है। वहां पर प्रत्येक हृदय उस अनंत प्रेमी परमेश्वर के प्रेम का समुचित प्रतिउत्तर देता है। पापी मनुष्य की आत्मा के तंत्र उस पवित्र वातावरण में उत्तेजित नहीं होते हैं। उस मनुष्य के विचार, उसके उद्देश्य स्वर्ग के निष्पाप निवासियों के विचारों से बिल्कुल विपरीत होंगे। स्वर्ग के मधुर संगीत में वह बेसुरा होगा। उसके लिए तो स्वर्ग यातनाओं का केंद्र बन जाएगा। स्वर्ग की चमक और उसके उल्लास के केंद्र परमेश्वर से वह तो आंख चुरा कर भागने की कोशिश करेगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से दुष्ट आत्माओं को निष्कासित करते समय अपनी ही इच्छा को लागू करने का सिद्धांत नहीं अपनाया, बल्कि वे तो अपने आप को स्वर्ग की संगति के अयोग्य समझने लगे और इसी कारण वे स्वर्ग से बाहर आ गए। वे स्वर्गदूत जो शैतान का पीछा किए और परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किए। परमेश्वर की महिमा उनके लिए तो भस्म कर देने वाली आग सिद्ध होगी। वे खुशी के साथ विनाश का स्वागत करेंगे ताकि वे उसका सामना करने से बच जाएं, जिसने उनके उद्धार के लिए अपना प्राण त्याग दिया। हमारे लिए अपनी शक्ति या अपनी सामर्थ से पाप के उस गड्ढे से बचकर बाहर निकलना कठिन ही नहीं परंतु असंभव भी है, जिसमें हम मनुष्य गिर चुके हैं। हमारा हृदय अपवित्र हो गया है, उसको बदलना असंभव है। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। यह हम अय्यूब में पढ़ते हैं, अय्यूब का 14:4 में। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। रोमियो 8:7। शिक्षा, संस्कृति, इच्छा शक्ति का अभ्यास तथा मानव प्रयासों का हमारे जीवन में अपना क्षेत्र व स्थान है, परंतु जहाँ तक पाप का क्षेत्र है वहाँ वे पूरी तरह से दुर्बल और असहाय हैं। हो सकता है कि उनके कारण बाहरी आचार विचार में कुछ सुधार हो जाए, परंतु वे हृदय को बदलने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे जीवन के स्रोत को शुद्ध नहीं कर सकते जब तक भीतर से हृदय पटल पर एक शक्ति सत्य प्रयत्नशील ना रहे। जब तक एक नया जीवन ऊपर से कार्य ना करे, तब तक एक पापी व्यक्ति के लिए एक पवित्र जन बनना असंभव है। ऐसी शक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसका अनुग्रह ही हमारी आत्मा की निर्जीव शक्तियों को जीवित कर सकता है और हमें परमेश्वर तथा पवित्रता की ओर आकर्षित कर सकता है। हमारे मुक्तिदाता ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, अर्थात जब तक उनमें नया हृदय, नई इच्छाएं, नए उद्देश्य और नई अभिलाषाएं नया जीवन पाने की ओर अगुवाई ना करे, तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। मनुष्य के स्वभाव में पाई जाने वाली अच्छाइयों का विकास करने की परंपरा से मनुष्य पवित्र और प्रेमी बन सकता है, यह सोच एक घातक धोखा है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यह हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 2:14 में। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3:7। मसीह के विषय में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यूहन्ना 1:4। और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सकें। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में। परमेश्वर की तरस भरी दया का केवल अनुभव करना ही पर्याप्त नहीं है, और ना ही उसके चरित्र की उदारता और पिता समान सहानुभूति को देखना ही पर्याप्त है। उसकी व्यवस्था में पाई जाने वाली बुद्धिमानी तथा निष्पक्षता की जांच करना और यह देखना है कि वह प्रेम के अमर सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं। प्रेरित पौलुस ने इन बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा है, मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। रोमियों 7:16-12। परंतु अपनी मानसिक वेदना की निराशापूर्ण स्थिति में वह कहता है, पर मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। रोमियों 7:14। वह पवित्र और निष्पाप जीवन के लिए तड़प रहा था, क्योंकि इन्हें वह अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह चिल्ला उठा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। रोमियों 7:24। सभी युगों में सभी देशों से पीड़ित हृदयों की जो चीख पुकार सुनाई दे रही है, उसकी केवल एक ही उत्तर है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। उन प्राणियों के लिए जो पाप के बोझ से आजाद होने की इच्छा करते हैं, इस सत्य को समझाने और स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने अनेक उपमाओं या उदाहरणों का प्रयोग किया है। ऐसाओं को धोखा देने का पाप करके जब याकूब अपने पिता के घर से भाग रहा था, तो उसके अपराध के कारण उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। अपने परिवार से अलग और अकेला हो जाने तथा जीवन को सुखमय बनाने वाले सभी प्रियजनों से बिछुड़ जाने पर एक प्रबल विचार उसके मन में उमड़ने लगा था कि कहीं उसके पाप के कारण वह परमेश्वर से अलग और स्वर्ग से वंचित तो नहीं हो गया था। शोकाकुल अवस्था में उसने उस खुले धरती को अपना बिछौना बनाया, जिसके चारों ओर सुनसान पर्वतमालाएं और ऊपर की ओर तारों से चमकता हुआ आकाश था। जब वह सो रहा था तो उसे स्वप्न में एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया और देखो, जिस मैदान में वह लेटा हुआ था वहां से धुंधली सी दिखाई देने वाली सीढ़ियां सीधे स्वर्ग के द्वार तक जाती हुई नजर आई, जिनके ऊपर से परमेश्वर के स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। उस महिमामय दृश्य में से एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें याकूब के लिए तसल्ली और उम्मीद का एक संदेश छिपा हुआ था। इस प्रकार याकूब की हार्दिक इच्छा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उद्धारकर्ता स्वयं उसके सामने आकर प्रकट हुआ। उसने खुशी से रोमांचित होकर वह मार्ग देखा जिसके द्वारा उस जैसा पापी व्यक्ति भी परमेश्वर के साथ मेल कर लेने में फिर से समर्थ हो सकता था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच वार्तालाप का एकमात्र माध्यम यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही इस अनोखी सीढ़ी के रूप में प्रकट हुआ था। यह वही प्रतिरूप है जिसका संकेत मसीह ने नतानियल के साथ वार्तालाप करते समय दिया और कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे, यूहन्ना 1:51। पाप में गिरने के कारण मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अलग कर चुका था और इस कारण पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी अलगाव पैदा करने वाली एक खाई बन गई थी। इस खाई के इस पार से उस पार तक वार्तालाप नहीं हो सकता था, परंतु मसीह द्वारा फिर से पृथ्वी का स्वर्ग के साथ संबंध जुड़ गया है। मसीह ने स्वयं उस खाई को पाट दिया है जो पाप के कारण बन गई थी, ताकि सेवा करने वाले स्वर्गदूत उस पर से होकर मनुष्यों से वार्तालाप कर सके। पतित मनुष्य की दुर्बलता और लाचारी की दशा में यीशु मसीह उसको उस महान शक्ति के स्रोत के साथ जोड़ देता है, किंतु मनुष्य के सारे स्वप्न हवाई किले ही रह जाएंगे। मानव मात्र की उन्नति करने के सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे यदि हम इन स्वप्नों के बीच पतित मनुष्य जाति के एकमात्र स्रोत को भूल जाएं। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, याकूब 1:17 में हम पढ़ते हैं, ऊपर ही से हैं। परमेश्वर से अलग कोई भी वास्तविक आदर्श चरित्र नहीं हो सकता है। परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। वह कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, यूहन्ना 14:6 में यह हम पाते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अपने बालकों के लिए परमेश्वर के हृदय में ऐसा प्यार उमड़ता है जो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रिय पुत्र को हमें देने के द्वारा परमेश्वर ने इस एक ही दान में संपूर्ण स्वर्ग उंडेल दिया है। उद्धारकर्ता का जीवन, मृत्यु, मध्यस्थता का कार्य, स्वर्गदूतों की सेवा, पवित्र आत्मा की सेवकाई, स्वर्ग से पिता के सारे कार्यों का नियंत्रण और सब लोगों में बसना, स्वर्गीय प्राणियों की निरंतर रुचि, ये सारे कार्य मनुष्य के उद्धार के लिए ही किए गए हैं। ओह, कितना आश्चर्यजनक बलिदान हमारे लिए दिया गया। जरा गंभीरता से इस पर चिंतन करें। खोए हुए मनुष्य को पिता के घर वापस लौटा लाने में परमेश्वर को कितनी शक्ति के साथ कितना अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। इसके लिए तो हमें हृदय से उसका धन्यवादी होना चाहिए। ऐसा महान उद्देश्य और ऐसे शक्तिशाली उपाय आज तक कभी भी किसी और कार्य में नहीं दिखाई दिए हैं। सत्य और धर्म के लिए अनुपम पुरस्कार, स्वर्ग सुख, स्वर्गदूतों के साथ विचरण, पिता और पुत्र के साथ प्रेम की सहभागिता, युग युग तक हमारी सारी शक्तियों की उन्नति व विकास, क्या ये सब हमें प्रेरणा नहीं देते? ये हमें उत्साहित नहीं करते कि हम अपने पूरे हृदय से, पूरी लगन से सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता की सेवा करें? दूसरी ओर परमेश्वर ने पाप के लिए जितनी भी दंड की आज्ञाएं घोषित की हैं, जैसे अनिवार्य प्रतिफल, हमारे चरित्र का पतन तथा अंतिम विनाश, ये सब परमेश्वर के वचन में हमारे लिए शैतान की आज्ञा पालन के विरुद्ध चेतावनी है। तो क्या हम परमेश्वर की करुणा का गुणगान ना करें? इससे अधिक हमारे लिए हमारा परमेश्वर और क्या कर सकता था? हमें चाहिए कि उससे सही संबंध स्थापित कर लें, क्योंकि उसने हम सब पर आश्चर्यजनक प्रेम उंडेल दिया है। हमें उन साधनों से लाभ उठाना चाहिए जो हमें दिए गए हैं, ताकि हम उनके अनुरूप बने। तभी हम स्वर्गदूतों की संगति का आनंद उठा सकेंगे और परमपिता तथा प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता के साथ सनातन काल तक रह सकेंगे। चलिए हम इसे चुनते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। तूने हमें बुलाया है कि हम तेरे पास आकर तुझे ग्रहण करके हम पाप से क्षमा पा सकते हैं और तेरे साथ जीवन जी सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम सबों को आशीष देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।